कुछ गुरुदेव के शब्द याद आते रहते हैं कि हम बातें अधिक करते हैं परंतु सत्संग के सार को समझते नहीं एवं सत्संग के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत या जीवन को बनाने का प्रयास नहीं करते। ये सत्य है कि हमारे सत्संग में भाइयों में काफी उत्साह है, उनके हृदय में उमंग है, तदपि जैसा कुछ गुरुदेव हमसे आशा रखते थे हम अभी तक वैसा बन नहीं पाए। उसमें दोष किसका? कुछ गुरुदेव का मेरे लिए आदेश था, अंतिम समय उन्होंने बहुत सारे भाई एकत्र थे उनके सम्मुख, उन्होंने आदेश दिया था और कहा था कि भाइयों को मैं जैसे बनाना चाहता था मैं नहीं बना सका। मेरा नाम लेते हुए उन्होंने आदेश दिया कि हमारे बाद भाइयों से सख्ती से यम और नियम का पालन कराना ताकि सत्संग को विशेषकर हमारे पूर्वजों के नाम को बदनामी ना हो। इस आदेश में उनकी गंभीरता थी तो मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं। मैं मानता हूं कि सबसे अधिक कमजोरी मेरी अपनी है। यदि मेरे आचरण में जैसा कुछ गुरु महाराज आशा करते थे वैसा मैं बन जाता, संभव है कि आप भाइयों के व्यवहार में साधना में प्रगति हो जाती। तब भी मेरा आप सबसे अनुरोध है कि साधना के प्रति गंभीर बने तथा सतर्क होकर पूज्य गुरुदेव के आदेशों का पालन करें। उनका मुख्य आदेश ये था कि प्रत्येक साधक को अपने आप को बनाना चाहिए। जैसा स्वर्ण को अग्नि में डालते हैं उसमें और चमक आती है, इसी तरह संसार के दुख सुखों में रहते हुए, संसार में सबके साथ सहयोग करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करें, भीतर में निर्मलता स्थापित करें, योग्यता स्थापित करें, जिसके परिणाम स्वरूप हम गुरुदेव के चरणों के समीप हो सकें, अर्थात उनके चरण हमारे भीतर में हैं, अपनी आत्मा ही है, उस आत्मा का साक्षात्कार करें। रास्ता बहुत लंबा है, हम में किसी का दोष नहीं है, दोष जो शिक्षक है, जो आपका सेवक है उसका है। जैसे जैसे उसका जीवन ऊंचा होता चले जाएगा ईश्वर कृपा करेंगे कि आप में भी सुधार आता जाएगा, परंतु इस रास्ते पे हमने सबने एकत्र होकर दृढ़ संकल्प लेकर अपने जीवन में सुधार लावा। बहुत कमी हमारे आचरण में, बहुत कमी कुछ गुरुदेव के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मैं आपको कहता नहीं अधिक, आप जो बात कहते हैं मैं हांसी हांसी करता रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी को भी सही बात कह दो कि तुम्हारे में ये गलती है तुम उसको सुधारो, तो वो नाराज हो जाता है। कुछ गुरु महाराज भी ऐसा ही करते थे, देखते थे हमारे दोषों को, देखते थे परंतु बड़ी कृपा करते थे, वो करुणा के सागर थे, हमें कुछ कहते नहीं थे, मगर भीतर में उनको दुख होता था। सत्संग में आने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ आए, भाई बहन मिले, आपस में बातचीत की, खूब खाना पीना अच्छा किया, भजन आदि गाए, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये जितने भंडारे हैं ये गंगा स्नान करने के लिए हैं, अर्थात भीतर में अपने आप को शुद्ध करने के लिए हैं, स्वयं निरीक्षण करने के लिए हैं। हमारे देश में संगम पर हरिद्वार में, इलाहाबाद में, गंगा जी में लोग मग जाते हैं, काय के लिए? अपने पिछले संस्कारों को खत्म करने के लिए, पवित्र होने के लिए। परंतु हम लोग इन बातों को भूल गए हैं, हमने एक तमाशा बना लिया है, मेला बना लिया है। इसलिए सेवक का निवेदन है, गुरु महाराज भी कहा करते थे, कोई दादा गुरु जी का भी यही आदेश था कि अपना स्वयं निरीक्षण करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी कमियां हैं। कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो, हम सब अपूर्ण हैं। कुछ गुरु जी महाराज का कहना था कि लोग बहुत घर से बाहर जाकर जंगलों में अग्नि के पास बैठकर तप करते हैं और कठिन साधना करते हैं, वो ठीक है, परंतु वास्तव में क्या करना चाहिए? हम अपने दोषों को देखें, अपनी कमियों को देखें। पहले जो साधारण कमी हो उससे निमित्त होने के लिए प्रयास करें, उस पर दो दिन लग जाए, महीना लग जाए, साल भर लग जाए, उस कमी से स्वतंत्र होना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे जितनी भी हमें कमी है एक एक करके सबको हम छोड़ दें। हमारे यहाँ की ये तपस्या, जब तक हम अपने आप को निर्मल नहीं करेंगे, ना तो हम भीतर से अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे और ना ही गुरु से या महापुरुषों की कृपा की प्रसादी सही ढंग से ले सकेंगे। तो प्रत्येक साधक को स्नान करना है भीतर का, अपने आप को निर्मल करना है। सत्संग में आने का अर्थ ये है कि हम अपने भीतर की मलिनता से मुक्त हो जाए। यहां से जब जाएं, वापस लौटें, तो हमारे घर वाले कहें कि हाँ ये गंगा स्नान करके आया है, ये सत्संग से आया, इसमें देखिए कितना मधुर परिवर्तन हुआ है। गुरु महाराज कहा करते थे कि साधारण व्यक्ति को संसार साधारण दृष्टि से देखता है, परंतु जो अपने आप को कहता है कि मैं सत्संगी हूं, तो संसार उसको सर से लेकर पांव तक देखता है और कोशिश करता है कि उसमें दोष देखे। Thank you. ये क्या कहता है, इसमें क्या विशेषता है, ये कहता है मैं सत्संगी हूं। तो इसलिए प्रत्येक सत्संगी को सतर्क रहना चाहिए कि उसका सिद्ध शुद्ध हो, पवित्र हो, उसका व्यवहार शुद्ध हो, मधुर हो, सबकी सेवा करता हो, ताकि लोग वह कह सके कि हाँ ये अच्छा सत्संगी है। उसके व्यवहार से लोगों को प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा द्वारा वो लोग भी प्रेरित होकर सत्संग में सम्मिलित हो। हमारे यहाँ इश्तिहादबाजी से लोगों को नहीं, हमारे यहाँ ढिंढोरा देके लोगों को सत्संग में नहीं बुलाया जाता। प्रत्येक व्यक्ति साधक अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित करता है, उसके व्यवहार को देखकर संसार के दूसरे लोग सत्संग में आकर्षित होते हैं। तो आप सबका दायित्व है कि अपने जीवन को आदर्शमय बनाए। हमारे पास लोग आते हैं, औरों को तो मैं क्या कहूं, मेरे में अपने में कई कमी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए भाइयों की बातें जो कहते हैं मैं सुन लेता हूँ, हाँ करता रहता हूँ। कैसे उनके दोष देखूं और कैसे उनको बताऊं, क्योंकि वही दोष तो मेरे में है। संत महात्मा जिसके हम अनुयायी हैं, तीन मुख्य बातें हैं। जो व्यक्ति सत्संग कराता है उसको हम सदगुरु कहते हैं। उसकी सोबत यानी उसका संग करना, उसका सत्संग करना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, साधना का जो तरीका बताता है बताते हैं, उसको नाम कहते हैं या सतनाम कहते हैं। तो गुरु बनाने से पहले जल्दी नहीं करनी चाहिए। दस आदमियों ने अपना नाम लिखाया तो बाकी भी कहते हैं हमें भी दीक्षा दे, पर हम भी विवश हो जाते हैं। हम लोगों के नाम भी नहीं जानते, उनके व्यवहार को नहीं जानते, उनके जीवन को नहीं जानते, परंतु वो आके विवश करते हैं, हम मजबूर होकर दीक्षा दे देते हैं। ये तरीका गलत है। पूज गुरु महाराज सावन सिंह जी का उदाहरण देखकर बदलाया करते थे कि दस जन्म तो लग जाते हैं मनुष्य को, योग बनने में तत्पश्चात चार पांच जन्म लग जाते हैं सच्चे सतगुरु की प्राप्ति में, तत्पश्चात तीन चार जन्म और लग जाते हैं जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करने में। ये साधारण बात नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। मेरी जबान इजाजत नहीं देती है कि कुछ गुरु महाराज अपने प्रति क्या कहते थे। इसके भाइयों से मेरा अनुरोध है जल्दी नहीं करो, जल्दी नहीं करो, सत्संग में आओ, सम्मिलित हो, सत्संग को समझो, सत्संग के क्या अर्थ हैं। सच्चा सत्संगी, सच्चा अधिकारी जब योग हो जाता है तो गुरु उसको अपना लेता है, जिज्ञासु गुरु को अपना लेता है। जैसे स्त्री पुरुष का विवाह होता है, इसी तरह ही सच्चे साधक का और सच्चे गुरु का संबंध होता है। हम अपने व्यवहार से लोगों की प्रतिक्रिया न सुने, वो ये न कहें कि देखिए ये ऐसे सत्संगी हैं, इनका व्यवहार कैसा है। यदि लोग बाग ऐसे कहते हैं, पहले तो परिवार के लोग कहते हैं, तो ऐसे सत्संग का महत्व खत्म हो जाता है। धीरे चलो, परंतु जो सत्संग के नियम हैं, जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हैं, परमात्मा के नियमों के अनुकूल हैं, उनको अपनाए। अभी हमारे महेश भाई साहब ने एक छोटा सा पैम्फलेट तैयार किया है, उसमें भी यही बात संकेत से लिखी है, यदि योग गुरु मिल जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति समझो कि आपको हो गई या हो जाएगी। गुरु एक साधन है, माध्यम है, पूजा ही ईश्वर की पूजा है, परंतु गुरु योग होना चाहिए, गुरु भगवान कृष्ण की तरह होना चाहिए, गुरु भगवान वशिष्ठ की तरह होना चाहिए। और शिष्य कैसे होने चाहिए? भगवान राम जैसे, अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर जैसे। ये बात सुनता है कि जिसको योग गुरु मिल जाता है उसको ईश्वर थोड़े समय में ही मिल जाता है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट होता है, परंतु ऐसे गुरु इतिहास में आपने पढ़ा होगा बहुत कम आते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अभी मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज क्या करते थे कि 10 जन्म तो लग जाते हैं पात्र बनने में, 4-5 जन्म लग जाते हैं सच्चे गुरु की प्राप्ति में, और आगे इतने ही जन्म लग जाते हैं जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में, अर्थात ईश्वर के साथ अद्रुप होने में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक आदर्श आचरण बनाए, अपने जीवन को आदर्श में बनाए। जैसे कुछ गुरु महाराज कहा करते थे हम वैसा ना बन सके, और उनको निराशा हुई, और उन्होंने कहा मेरा नाम लेकर के देखना कि हमारे पश्चात हमारे शरीर छोड़ने के बाद यम और नियम का सत्य से पालन करना। जीवन को आदर्श में बनाए। हम तो आते हैं भिक्षा मांगते हैं, संसार की वस्तुएं मांगते हैं, बच्चों की छात्रों के लिए कहते हैं, वहां के 2-3 दिन में ईश्वर का नाम तो कोई लेता नहीं, पूछता नहीं है कि साधन कैसे करना है, साधन में क्या प्रगति हो रही है, क्या हम कर रहे हैं, कोई बात करता ही नहीं है। सब परिवार सांसारिक बातें करते हैं, ये किसी का दोष नहीं है, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, हम समान संसारिक व्यक्ति हैं, गुरु को अपना हितेशी मानते हैं और किससे बातें करें, परंतु समय का सदुपयोग करने के लिए पहले अपने आप को बनाओ, उस बनाने में यदि कोई कमी आ रही है तो उससे कहना चाहिए कि हमारे रास्ते में ये रुकावटें आ रही हैं, उसके पास नहीं जा सकते हो तो पत्र द्वारा अपनी बातें लिखो। अब जितने पत्र आते हैं उन तो सब में पारिवारिक बातें ही होती हैं, परमार्थ की बात, कोई साल में एक दो पत्र आते हैं तो कोई परमार्थ के प्रति पूछता ही नहीं। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता, देश में ऐसी स्थिति चल रही है, लड़की वाले कितने दुखी हैं, बच्चे पढ़ लिख कर उनकी नौकरी नहीं लगती, काम नहीं लगता है, वो किससे किसके साथ जाके रोए, किसको बात करें, बहुत यही पत्र इसी प्रकार के पत्र आते हैं और यहाँ बातें भी इसी प्रकार की होती हैं। तो सत्संग करने आए हैं, सत्संग के अर्थ है सत का संग करना, ईश्वर का संग करना, ईश्वर जैसे व्यक्ति जो है उनका संग करना। गंगा स्नान करने आए हैं, मेरी बात को बुरा नहीं मनाएंगे, परंतु मैं क्या करूं, गुरु महाराज के शब्द मेरे कानों में गूंजते और मेरा आचरण इतना शुद्ध नहीं है, इतना आदर्श में नहीं है कि मैं सख्ती से आपसे कहूं कि आप ये क्या बातें मुझसे कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इस साधना की बात मुझसे करते, ये मेरे में साहस नहीं है, मेरी ये कमजोरी है। कमजोरी इसलिए है कि मेरा स्वयं का आचरण इतना शुद्ध नहीं। दो दिन रहे हंसी मजाक में समय गुजर गया, किसी व्यक्ति ने भी आकर गंभीर बात नहीं करी, तब भी मैं आप सबको बुरा नहीं कहता, हाँ आपसे करवत प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें सबको अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतर्क रहना है, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उसको मोक्ष का दीजिए, संसार के काम अपने आप होते जाए, उसके लिए अधिक चिंतित ना। जो आपका धर्म है वो वैसा काम करते रहिए, परंतु विशेष महत्व अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास करें, उसको विशेष महत्व दें। मुझे आशा है कि आप मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे। सब भाइयों को, विशेषकर जिनके प्रति भाइयों को मार्गदर्शन दिखाने का दायित्व है, वे प्रयास करते रहे कि वे स्वयं तथा उनके साथ जो भाई सत्संग करते हैं, वे अपना आत्मजीवन प्रगतिशील बनाते रहे। यहाँ आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, यहाँ के भाइयों में संकट देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। उन्होंने बड़े प्रेम से बाहर से आए हुए भाई बहनों की सेवा की है, प्रेम और स्नेह से उन्होंने हम सबको प्रभावित किया है और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिन रात, चाहे उनका शरीर स्वस्थ है या नहीं है, सब भाई बहन आप लोगों की सेवा करने में वो लगे हैं। मैं उन सब का आभारी हूँ, विशेषकर श्री धर जी का तथा अन्य भाई बहनों का, परमात्मा से, कुछ गुरुदेव से, गुरुजन से मेरी नमन प्रार्थना है कि वे उनको शक्ति दें, इसी प्रकार आगे भी आप सभी सेवा करते हैं। आपका भी मैं अति आभारी हूँ, आपने अपना पूर्ण योगदान दिया है। कोई इस सत्संग में शोर आदि नहीं हुआ है, सब ने सहयोग किया है, बड़ी शांति से आप सब लोग बैठ रहे हैं। प्रभु कृपा करें कि आपको यहाँ आकर जो भी प्रसादी मिली है काम देशी, उसको हजम करने की कोशिश करें और वापस जाकर अपने व्यवहार द्वारा परिवार के सदस्यों को एवं अपने मित्रों को इतना प्रभावित करें कि वो खुश हो जाएं कि ये गंगा स्नान करके आए हैं।